आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनि शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम शिवम शुद्ध बुद्धम परम विश्वनाथम न देवो न बंधुर्न कर्मा न कर्ता न बंधुर्न कर्मा न कर्ता न अंगम न संगम न स्वेक्षा न कायम क्षाकायम् चिदानन्दरूपम् नमो वीतरागम् नमो वीतरागम् न बन्धो न मोक्षो न रागादिदोषो योगम न भोगम न व्याधिर्न शोक न व्याधिर्न शोक न कोपम न मानम न माया न लोभम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम न हस्तौ न पादौ न घ्राणम् न जिह्वा न चक्षुर्न कर्णम् न वक्त्रम् न निद्रा न स्वामी न भृत्यो न देवो न मर्त्या चिदानन्द रूपम नमो गीतरागम नमो गीतरागम न जन्मम न मृत्यु न मोहम न तंद्रा न मृत्यु न मोहम न न क्षुद्रो न भीतो न कार्ष्यम न तंद्रा न भीतो न कार्ष्यम न तंद्रा न स्वेदम न खेदम न वर्णम न मुद्रा न वर्णम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम नमो वीतरागम त्रिदंडे त्रिखंडे हरे विश्वनाथम त्रिखंडे हरे विश्वनाथम ऋषिकेश विध्वस्त कर्मादि जालम विध्वस्त कर्मादि जालम न पुण्यम न पापम न चाक्षादि गात्रम चाक्षादि गात्रम चिदानंद रूपम नमो वीतरागम रूपम नमो वीतरागम न बालो न वृद्धो न तुच्छो न बूढ़ो वेदम न भेदम न मूर्तिर्न स्नेह न कृष्णम न शुक्लम न मोहम न तंद्रा निदानंद रूपम नमो वीतरागम नाद्यम न मध्यम न अंतम न चान्य ద్రవ్యం న క్షేత్రం న కాలో న భావాన్. శిష్యో గురునాపి దీనం న దీనం. రూపం నమో ఇదం జ్ఞాన రూపం స్వయం తత్వవేదీ. న పూర్ణం న శూన్యం న చైత్యం స్వరూపం. త్రైలోక్యాధిపతి స్వయం స్వమనసా ధ్యాయంతి యోగీశ్వరా. వందే తం హరివంశహర్షహృదయం. శ్రీమాన్ హృదావ్యుచ్యతాం. వీతరాగ్ భగవాన్ కి అపన్ పరమ ఋషి మంగళ పఢ్ రహే హైన్, జిస్మే విభిన్న ప్రకార్ కి రిద్ధియో కో ధారణ కర్నే వాలే मुनिजनों को अपने कल्याण में निमित्त बनाया गया है कि ये सब मुनिजन हमारे कल्याण में निमित्त बने. आज अपन का इतना सौभाग्य तो नहीं है कि ऐसे मुनिजनों के जो कि रिद्धिधारी हैं उनके अपन दर्शन कर सकें, पर अपन रोज रोज ऐसी भावना तो भाई सकते हैं कि जहाँ पर भी विदेश क्षेत्र में तो हमेशा ऋषि मुनि यति और अंगार रहते ही हैं, तो वहाँ पर रिद्धिधारी मुनि गणधर 63 रिद्धि वाले हैं, केवल ज्ञान से युक्त हैं, वो भी वहाँ हैं. तो इतनी भावना भा सकते हैं कि हमको भी अपने जीवन में इनके दर्शन हों और ये हमारे मंगल में निमित्त बने, हमारे कल्याण में निमित्त बने. इसी भावना से अपन इसको पढ़ रहे हैं. कल 18 प्रकार की जो बुद्धि रिद्धि के भेद, एक रिद्धि हो गई पूरी बुद्धि रिद्धि है, जिसमें क्या क्या प्राप्त होता है. केवल ज्ञान, मन पर ज्ञान, अवधि ज्ञान, कोष्ठस्थ बुद्धि रिद्धि, बीज बुद्धि रिद्धि, फिर संभिन्न श्रोतृत्व नाम की बुद्धि रिद्धि, पदानुसारी नाम की, ऐसी 7 हो गई. फिर पांचों इंद्री हैं, पांचों इंद्री में स्पर्श तो दूर स्पर्श, इसी तरह दूर श्रवण, दूर आस्वादन नाम की रिद्धि, दूर घ्राण और दूर चक्षु, ये 5 इंद्रियों के तो 12 इस तरह से ये हो गए. फिर प्रज्ञा श्रमण नाम की रिद्धि प्राप्त हो जाती, प्रत्येक बुद्धि रिद्धि प्राप्त होती, अभिन्न दश पूर्वी और चतुर्दश पूर्वी, और तटस्थवादी और अष्टांग निमित्त, ये 6 और, तो 12 और 6 18 हो गई ये बुद्धि रिद्धि. अब कहते हैं इसके बाद चारण रिद्धि के भेद प्रभेद कितने हैं वो पढ़ते हैं अपन. वे सब मुनि महाराज कैसे होते होंगे, रिद्धि का प्रयोग नहीं करते पर उन रिद्धियों के कारण उनको इतनी सामर्थ्य प्राप्त हो जाती, वे चाहें तो ऐसा कर सकते हैं, पर ऐसा नहीं समझना कि वे ऐसा करते हैं, हैं? उनके पास ये सामर्थ्य है करने की. जैसे कि कहते हैं कि
इंद्र चाहे तो तीनों लोकों को, सौधर्म इंद्र चाहे तो डमरू के समान उलट पुलट कर सकता है, लेकिन करता नहीं है। इसकी सामर्थ्य बताने के लिए इस तरह से, तो ये सामर्थ्य उनकी बताई, जो वास्तविक सम्यक दृष्टि मुनि महाराज होंगे उन्हीं को रिद्धियां प्राप्त होती, उपयोग काय को करेंगे वो। जंघा नल श्रेणी फलांबु तंतु, जंघा नल श्रेणी फलांबु तंतु, प्रसून बीजांकुर चारणाभा, बीजांकुर चारणाभा, नवोंगण स्वैर विहारिनश्च, नवोंगण स्वैर विहारिनश्च, स्वस्ती क्रियासु परमर्षयोना, क्रियासु परमर्षयोना। ये जो है चारण विधि है, इसको अपन चाहें तो दो भेद कर सकते हैं, एक चारण विधि और एक आकाश गामित्व विधि, इसके दो भेद कर लिए। इसको कहीं कहीं पर क्रिया विधि भी मान लिया, या कि दो भेद क्रिया और विक्रिया, और फिर क्रिया में चारण वृद्धि और आकाश गामित्व, तो इसमें एक वृद्धि के बारे में दो भेद कर दिए, चारण वृद्धि और आकाश गामित्व वृद्धि, इसमें सारे आ गए। जैसे जंघाचारण, जंघाचारण वो कहलाती है वृद्धि जिसमें कि बिना जो है वो जंघाओं को हिलाए हुए आकाश में उत्क्षेपण विक्षेपण करने की, चार अंगुल ऊपर आकाश में चलेंगे, एक तो अंतरिक्ष में जाना वो आकाशगामी वृद्धि अलग है, और ये चारण वृद्धि में जमीन से चार अंगुल ऊपर आकाश में चलेंगे, लेकिन जंघाओं के उत्क्षेपण विक्षेपण में इतनी चतुराई होती है कि कई योजन शीघ्रता से वो और चले जाते हैं, ये सामर्थ्य उनको प्राप्त हो जाती बिना किसी एफर्ट के। मतलब जैसा अपन को बहुत प्रयत्न करना पड़ेगा, उनको बिना किसी प्रयत्न के और आसानी से और गमन कर सकते हैं। फिर कहलाता है श्रेणी चारण, श्रेणी चारण आकाश की जो पंक्ति है उसको बोलते हैं श्रेणी। जैसे कि एरोप्लेन की अपनी एक लाइन होती है, उनकी अपनी डायरेक्शन होती है, उसी जगह से वो मूव करते हैं। जैसे कि अपना रेल की पटरी बिछी है तो रेल को उसी के अलोंग चलना पड़ेगा, ऐसे वैसे कहीं नहीं चल सकती। ठीक इसी तरह से आकाश में जो पंक्ति है, आकाश में जो प्रदेश है आकाश के, उनकी एक पंक्ति होती है, उसको श्रेणी बोलते हैं, उसी के अलोंग वो चल सकते हैं, जबकि अपने को तो दिखाई नहीं पड़ रही कि कैसे आकाश के प्रदेश कैसे अरेंज हैं। इसमें अपन कभी कभी डस्ट पार्टिकल्स देख सकते हैं, ऐसे में नहीं दिख रहे हैं डस्ट पार्टिकल्स, और अगर एक ठो कोई सूर्य की ऐसी किरण आ जाए उसके बीच में अपन देखते हैं कितने डस्ट पार्टिकल्स, कितने धूल के कण हैं, वो अपन को दिख नहीं रहे, पर उनको वो सब दिखते हैं और उस आकाश पंक्ति के अनुसार वो जा सकते हैं, इतनी सूक्ष्म उनको उसके ऊपर पैर रख करके, जो कि अपन को दिखाई नहीं पड़ता, इस तरह की विधि प्राप्त हो जाती। फिर हम इसमें एक भूल गए, अनल, अनल मतलब अग्नि, अग्नि की शिखाओं पर गमन करने की सामर्थ्य, लेकिन अग्नि का एक जीवों की विराधना नहीं होगी, ये ध्यान रखना। उनका शरीर इस तरह का हो गया कि अग्नि की शिखाएं हैं उनके ऊपर वो गमन कर सकते हैं आसानी से, लेकिन उससे अग्नि कायक जीवों की विराधना नहीं होगी। इसी तरह फिर फलचारण, विभिन्न प्रकार के फलों के ऊपर से चलेंगे लेकिन उसमें रहने वाले वनस्पति कायक जीवों की विराधना नहीं होगी। ये एक कैपेसिटी बता रहे हैं, नहीं तो आप ये सोचो कि क्या जरूरत पड़ी थी कि फल के ऊपर से चढ़ो, चलो तो कोई चलना थोड़ी है, पर उनके अंदर ऐसी क्षमता, ऐसा शरीर हो गया, इतनी विशुद्धि के कारण शरीर इस तरह का हो गया उनका। जलचारण, जल के ऊपर वे आसानी से जल कायक जीवों की विराधना किए बिना, नाव चलती है जल के ऊपर लेकिन जल कायक जीवों की विराधना होती है, उनको ऐसी रिद्धि प्राप्त हो गई कि वे जल के ऊपर ऐसे चलेंगे जिससे कि जीवों की विराधना नहीं हो, इस तरह की रिद्धि। तंतुचारण, ये जो वो होते ना मकड़ी के जाल, उसको बोलते तंतु। अब वो कितना डेलिकेट है, अगर कोई जरा सा छू ले तो टूट जाएगा वो, लेकिन वो उस तंतु के ऊपर से चल सकते हैं, उनके शरीर के भार से वो तंतु टूटेगा नहीं, ऐसी वृद्धि उनको प्राप्त हो। अब ये बड़ी बड़ी मैरेकुलस लगती हैं, मतलब बड़ी चमत्कारिक चीजें हैं, तो ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है जो अपन को खुद को तो समझ में नहीं आती, ना अपन इस पे कोई विश्वास कर सकते एकदम सहसा। जब शुरू शुरू में एरोप्लेन बना होगा और जब उसमें बैठ करके लोग उड़े होंगे,
जो पहले पहले बताते हैं ट्रेन चली थी तो उसमें बैठ करके तो काफी लोग तो भीड़ देखने आई थी। अच्छा ऐसा हो सकता है क्या? अब उस समय उनको क्या लगेगा? अजूबा लगेगा। ऐसे ही अपन को भी ये रिद्धियां सुनकर के कैसा लगेगा? अजूबा लगेगा। कोई प्लेन में बैठ, कोई आकाश में उड़ सकता पक्षी की तरह से? हाँ उड़ सकता। जब तक प्लेन नहीं बने थे तब तक तो अजूबा ही था। और जिस दिन देख लिया, जिस दिन बैठ लिया, अभी भी जो नहीं बैठे होंगे उनको अजूबा लगता होगा कि क्या करते, कैसे जाते होंगे, उधर सांस कैसे लेते होंगे। तो इसी तरह इसको भी लेना, नहीं तो अपने को इन चीजों पर सहसा विश्वास नहीं होगा। ये सारी रिद्धियां भी इसी तरह। अब आचार्य जी कहते हैं पहले युग था मंत्र का, विभिन्न प्रकार के मंत्रों के माध्यम से ये सारी चीजें सिद्ध हो जाती थी। आज का युग है यंत्र का। आज हम वही काम यंत्र के द्वारा, मशीन के द्वारा करते हैं। पहले अपने आत्मबल और मंत्रों की सामर्थ्य से वही काम कर लेते थे। अब ये वो काम ज्यादा कठिन है क्योंकि यंत्र का भी एक मंत्र होता है, उसका भी कोई फॉर्मूला है, इक्वेशन है उसका, उसके बेसिस पर वो अपना फंक्शन करता है। और पहले उसी इक्वेशन या कि उसी फॉर्मूला से खुद अपने भीतर और इस तरह की सामर्थ्य प्राप्त करके इन सब चीजों को हासिल कर लेते थे। ऐसा समझे अपन, पुष्प फूलों के ऊपर से उनमें रहने वाले जीवों को बिना तकलीफ पहुंचाए गमन करने की सामर्थ्य, बीज विभिन्न प्रकार के बीजों के ऊपर से और गमन कर सकते, अंकुर के ऊपर से गमन करें और अंकुर को कोई क्षति ना पहुंचे, ऐसी सामर्थ्य आ गई। मतलब ये विभिन्न प्रकार की उनके जमीन से चार अंगुल ऊपर आकाश में चलने की सामर्थ्य, ये सब रिद्धि, ये चारण रिद्धि कहलाती है। इसी को अपन क्रिया रिद्धि भी कह सकते हैं। और आकाश में स्वच्छंद कहीं भी जाकर के और विचरण करें वो भी चारण रिद्धि है, लेकिन उसका नाम क्या है? आकाश गामित्व रिद्धि। आकाश में जैसे चाहे वैसे विचरण कर सकते हैं। 5000 धनुष ऊपर जैसे भगवान का शरीर पहुंच जाता है और इतना हल्का हो जाता है वेटलेस की एक एटमॉस्फेयर की लेयर पार करके और वहाँ वो स्टेबल हो जाते हैं, वहाँ वो आसानी से जैसे हम चलते हैं स्टेप रखते हुए वैसे चल सकते हैं। और इतने ही नहीं, इसमें लिखा हुआ है कि चाहें तो पालथी मार करके बैठ गए हैं, पद्मासन से बैठ गए और फिर भी आसानी से मूव कर सकते हैं। हो सकता है कि स्टेप नहीं रखें और स्टेबल हो जाएं और जैसे स्केटिंग करते हैं ना, स्केटिंग करते हैं उसमें क्या करते हैं, ऐसे स्लिप होते चले जाते हैं, कुछ पैर देख देख उठा के तो रखना ही पड़ते हैं, बस ऐसे खिसकते चले जाते, तो ऐसे भी कर सकते हैं। मतलब विभिन्न प्रकार की सामर्थ्य उनको प्राप्त हो जाती। इसमें से देखने में ये आया है कि चारण विद्धिधारी मुनि आकाश मार्ग से आए और आकर के आहार ले लिया उन्होंने। और जो चारण विद्धिधारी मुनि हैं उनको चतुर्मास करना अनिवार्य नहीं। ये सब विद्धिधारी मुनियों को चतुर्मास मतलब, क्योंकि उनके द्वारा तो चलने फिरने से हिंसा होने वाली नहीं, उनके किसी भी एक्शन से कोई हिंसा नहीं होने वाली है, इसलिए वो निरंतर गमन कर सकते हैं। अनिंदक्षा कुशलामहिनी, अनिंदक्षा कुशलामहिनी, लघु सत्ता कतिनो गरिनी। मनो वपुर्वा वरुणस्य नित्यम् स्वस्ति क्रियासु परमर्षयोना। अब विक्रिया रिद्धि है। विक्रिया के मायने हैं छोटा बड़ा, एक अनेक, कई रूपों का शरीर बना लेना, इसको कहते हैं विक्रिया रिद्धि। छोटा बड़ा बना लेना, कई कई बना लेना, एक शरीर के जैसी आकृति चाहे वैसी बना लेना, ये सब जो है विक्रिया रिद्धि कहलाती। उसमें उसमें भेद दिए हैं अनिंदक्षा, इसको बोलते अनिमा रिद्धि, दूसरी है महिमा रिद्धि, फिर लघिमा रिद्धि और गरिमा रिद्धि, ये हो गई चार। इन्होंने चार की लीन है, हालांकि कहीं कहीं पर जो है और इनको ऐसा आगे ले लेंगे, ठीक कामरूप वशिष्ठ इत्यादि ये आगे ले लेंगे, पर इसके साथ में इन्होंने मन वचन काय बल, ये बल रिद्धि अलग है, इसके तीन जोड़ दिए हैं और चार ले लिए हैं विक्रिया रिद्धि के। इसमें अकेली विक्रिया रिद्धि के नहीं है, विक्रिया रिद्धि चार हैं, अनिमा महिमा लघिमा और गरिमा, और बाकी फिर आ गई बल रिद्धि जिसमें मन वचन काय का विशेष बल, ये सात रिद्धियाँ इसमें हो गई। ये सब भगवान हमारा, ये सब मुनिजन हमारा मंगल करें। अब देखें अपन अनिमा रिद्धि क्या है। अणु के समान
सूक्ष्म शरीर बना लेने की सामर्थ्य। हाँ, ये देवों को भी होती है, उनको बाई नेचर बाई बर्थ होती है वो, और यहाँ पर मुनि जनों को अगर होगी वह तो वे अपने तपस्या से उसको अचीव करेंगे। इसलिए इसमें मैंने उसमें लिखा हुआ है कि कमल की जो नाल होती है
इतना सूक्ष्म शरीर बना के उसके भीतर चाहें तो वो प्रवेश कर सकते हैं, और इतना ही नहीं वे उसके भीतर जाकर के और उतने से स्थान में और चाहें तो चक्रवर्ती की जितनी जितना परिवार है उसकी विभूति उस सब की भी रचना कर सकते हैं उसके भीतर। अब बताइए कैसा लगेगा एकदम, क्या रहेगा तो सब बहुत क्या कहेंगे उसको, बाउंसर ऊपर से निकल गई ये बातें तो कोई एकदम विश्वास नहीं करेगा, लेकिन क्या करें ऐसी ऐसी भी चीजें हैं, इतना ही नहीं है जितना हम जानते हैं या जितना विज्ञान जानता है, संसार उतना ही नहीं है, इससे भी और कहीं अधिक है, इतनी मिस्ट्री है। आज हमको किसी ने बताया था कि अभी भी विज्ञान के सामने इतनी इतने रहस्य हैं जिनके बारे में उसे खुद भी नहीं मालूम है। वो बताते हैं कि वो आता ना इस पर टेलीविजन पर कोई डिस्कवरी है, उसमें इतनी इतनी चीजें, बड़ा आश्चर्य होता है उन चीजों को देख करके। अपन ने तो देखा नहीं भैया, लेकिन अपन ने ये देखा, आचार्यों ने जो लिखा है वो तो हमने देख समझा कि हाँ ऐसा होता होगा, उसको आज आप देख रहे हैं, उस पर जल्दी विश्वास हो जाता है और उसके माध्यम से धर्म पर विश्वास हो जाए, इसके लिए बहुत पुण्य चाहिए। हाँ, वो तो पापी को भी विश्वास हो जाएगा उन चीजों पर जो सामने दिख रही हैं, लेकिन जो सामने नहीं दिख रही और आचार्यों ने लिखी हैं इसलिए विश्वास करना, इसके लिए बहुत पुण्य चाहिए पल्ले में, नहीं तो होता नहीं। हाँ, इसके लिए मैं कई बार सोचता हूं, जब भी कोई साइंस का अचीवमेंट होता मैं उसको पढ़ता हूं तो मुझे फौरन ये लगता है कि अपने यहां पर ये चीज इस तरह से लिखी है, बड़ा मजा आता है। हाँ, तुम क्या आपके पास है वो तो ठीक है, पर हमारे आचार्यों ने ये लिखा हुआ है बस, इसमें अपने को ज्यादा आनंद आता, उसमें तो है ही लेकिन हमारे यहाँ आचार्यों ने भी ऐसा लिखा है, ऐसा हमें गौरव होना चाहिए। तब ये अनिमारिद्धि हो गई, महिमा, महिमा में तो समझ में आता है कि मेरु के समान इतना बड़ा, और विक्रिया जैसे कि किसने कर ली थी है याद, विष्णु कुमार मुनि महाराज, आने वाला 22 तारीख को हैं, विष्णु कुमार मुनि महाराज ने पूरा अपना शरीर सुमेरु के बराबर, एक पैर उठाया तो सीधा मानुषोत्तर पर्वत पर रख दिया एक स्टेप, इतना बड़ा 2.5 द्वीप बराबर जो है उनकी विक्रिया, उन्होंने इतना बड़ा शरीर कर लिया, ये महिमा नाम की विक्रिया रिद्धि है इस तरह। और जब छोटा सा बनाया था तो कितना सा, बटुक ब्राह्मण मुश्किल से 3.5 हाथ का इतना सा बना लिया, तो ये सब विक्रिया रिद्धि कहलाती, महिमा रिद्धि में इस तरह आ गया। उसका उदाहरण भी दिया है, विष्णु कुमार मुनि महाराज को यह रिद्धि प्राप्त हुई थी, फिर उन्होंने इसका प्रयोग किया था तो प्रायश्चित भी लिया था, ये ध्यान रखना, उनको प्रभावना धर्म की रक्षा के लिए करना पड़ा था प्रयोग, तब फिर बाद को उन्होंने अपना पद छोड़ करके, एक एक आचार्य कहते हैं, एक कहानी में आता है बताएंगे इसको, कि एक एक आचार्य मानते हैं कि पद छोड़ के किया था, दूसरे कहते हैं कि नहीं पद कैसे छोड़ सकते हैं, वो तो मुनि रह करके ही विक्रिया का उपयोग करेंगे, 6ठे 7वें गुण स्थान में विक्रिया का प्रयोग होता है, जो सिद्धांत समझते हैं उनको समझना चाहिए, ये 6ठे 7वें गुण स्थान में रहने वाले महामुनियों के द्वारा ही प्रयोग में आएगी और कोई सामान्य व्यक्ति इसका प्रयोग नहीं कर सकता। हाँ, तो एक आचार्य मानते हैं कि नहीं उन्होंने उसी अवस्था में प्रयोग किया था और फिर बाद में प्रायश्चित किया। फिर उसके बाद कह रहे हैं लघिमा रिद्धि, लघिमा मतलब वेटलेस। हाँ, लघिमा के मायने हैं वेटलेस हो जाना, इतना शरीर हल्का हो जाता कि वायु में आसानी से वायु के समान हल्का शरीर कर लिया इस तरह का। और फिर उसके बाद आता है गरिमा रिद्धि, इतना भारी कि वज्र के समान हिले ही नहीं है, जैसे महाराज ने सवेरे सुनाया था कि उन्होंने अपना पैर टिका दिया, अब हिला उसको है नेमिनाथ भगवान। ये सब चीजें उनको मैंने सहज रूप से प्राप्त होती हैं इन तीर्थंकर वगैरह को, ये अनंत बल है उनके शरीर का, मन वचन काय का अनंत बल, उनको बल रिद्धि के बिना ही उतनी सारी चीजें प्राप्त हैं, जिसको ये रिद्धि प्राप्त होती उसको भी इसी तरह से ये सामर्थ्य प्राप्त हो जाती, वज्र के समान अपना शरीर भारी बना सकते हैं। अभी अभी लिख करके ला रहे हैं सब बच्चे लोग। अब जो है ये विक्रिया रिद्धि का इसमें चूंकि अब रुक गया, अपन फिर पढ़ेंगे, अभी 3 रिद्धियां और आ गई, मन वचन काय का बल, इनके बारे में बड़ा विशिष्ट वो है, तीनों का बल मन की इतनी सामर्थ्य प्राप्त हो जाती, इतना क्षयोपशम प्राप्त हो जाता कि अंतर मुहूर्त के अंदर पूरे द्वादशांग का बिना थके, अपन तो थोड़ा पढ़े तो थक जाएंगे, अब समझ में नहीं आ रहा, अब मेमोरी में आ ही नहीं रहा है, नहीं, उनको मन बल इतना प्राप्त हो गया कि पूरे द्वादशांग को अंतर मुहूर्त में चिंतन कर लेंगे विभिन्न प्रकार से, इतनी सामर्थ्य, और थकेंगे नहीं, सबसे बड़ी चीज। और वचन वृद्धि, अंतर मुहूर्त के अंदर सारे द्वादशांग का उच्चारण कर देंगे, जो अपन ने कल कहा था कि द्वादशांग का पूरा पाठ अंतर मुहूर्त के अंदर कर सकते हैं, ये वचन बल वृद्धि। लेकिन कंठ और अवरुद्ध नहीं होता और ना उनका कोई थकान उनके लिए आती है सारे द्वादशांग का पाठ करने के बाद अंतर मुहूर्त में, ये वचन बल वृद्धि कहलाती। और काय बल अर्थात एक माह, चार माह, एक एक वर्ष अधिकतम प्रतिमा योग में बैठ गए, पानी बरसो तो, आगी बरसो तो और ठंड आओ तो, एक वर्ष तक तीनों योग प्रतिमा के समान बैठ गए, अन्न जल का सबका त्याग। फिर भी ध्यान रखना, एक साल के बाद उठेंगे तो शरीर का बल पहले से और अधिक बढ़ गया। अब बताओ, होना ये चाहिए था कि घट जाएगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस वृद्धि के प्रभाव से शरीर में कोई क्षति नहीं, बल्कि शरीर और अधिक तेजस्वी हो गया, ये काय बल वृद्धि कहलाती। इस तरह से ये वृद्धियां हैं, और इन सब वृद्धियों को धारण करने वाले महामुनि नियम से मुक्ति पाते हैं और वे हमारे कल्याण में निमित्त बने, अपन इतनी भावना तो भाई सकते हैं। अब जो है थोड़े से ये क्वेश्चंस, इनमें से आज तो बड़े बड़े क्वेश्चन भी आ गए हैं, मतलब बड़े बड़े कागज पर लिख करके आए हैं। पहले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर रहा करे, इसमें प्रेम और मोह में अंतर क्या है? मोह और प्रेम कहाँ हो रहा है, कहाँ मोह हो रहा है, कहाँ प्रेम हो रहा है, ये हमें समझ में नहीं आता, तो इन दोनों का अंतर करें, क्योंकि लिखा है कि पहले प्रेम परस्पर जग में मोह दूर पर रहा करे। प्रेम वो है जो कि हमें एक दूसरे के प्रति निश्चिंत और मुक्त करता है, और मोह वो है जो एक दूसरे के प्रति हमें बाइंड अप करता है और आसक्त करता है, और जो जो आसक्ति का दुख हमें भोगना पड़ता है वो मोह है, और जो प्रेम की निश्चिंतता है जिससे कि हर्ष होता है उसका नाम प्रेम। प्रेम करने वाला हर्षित रहेगा और मोह करने वाला हमेशा दुखी रहेगा। अब देख लो अपन अपने भीतर झांक करके कि चीज़ों के प्रति मोह है तो वे चीज़ें रहें तो भी सुख नहीं, कमती हैं ऐसा लगेगा, और नहीं है तो पीड़ा है। हर स्थिति में अगर हमारी उनसे आसक्ति, ये उदाहरण ले लो, ये अच्छी चीज़ है, अच्छे को अच्छा कहना बहुत अच्छी, जिसकी है उसके पास ही रहे, मुझे कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन ये चीज़ अच्छी मुझे लग रही, इस चीज़ से मेरा प्रेम है, अब ये मेरी हो जावे, बस हो गया, आ गया मोह, अब कोई छू नहीं सकता मेरे से पूछे बिना, आ गया इतने में, और कोई भी ले, कोई भी करो, मेरा तो उस चीज से लगाव है, मेरे लिए बहुत अच्छी लगती है ये चीज, कोई भी उपयोग करो मुझे कोई दिक्कत नहीं, फिर भी मेरा प्रेम है उस चीज के प्रति, ऐसे ही व्यक्ति के प्रति, ऐसे ही वस्तु के प्रति, कितनी जल्दी से हमारा मालूम पजेसिव न, ये मोह ऑनरशिप, ये मेरी चीज, जैसे नदी बह रही है कितनी सुंदर लगती है, एक अंजलि पानी मुझे पीना है बस मेरा काम हो गया, नहीं पूरी नदी मेरी है, मेरे से पूछे बिना कोई पानी नहीं पी सकता, हो गया अब रो अब मोह है ये इतना ही अंतर है भैया, और कैसे समझाएं दोनों चीजों में, अपने परिणाम स्वयं समझना चाहिए तो जल्दी हो जाएगा। ये तो सब जगह ऐसा रहता है, क्या करें, पढ़ दें क्या इसको पूरा, पढ़ देते हैं, सुनने में क्या दिक्कत, लेकिन मन खराब नहीं करना, इसीलिए लिखा है कि या तो उतने ही पढ़ो, उतने ही देखो, उतने ही सुनो, उतने ही करो जिससे पाप का बंध ना हो, कदम चरे कदम चिपके कदम भुंजे जभा से, आचार्यों ने लिखा मुनिजनों को, कैसे चलूं, कैसे आऊं, कैसे खाऊं, कैसे सोऊं,
कैसे बोलूं जिससे पाप का बंध ना हो। अब इसी में से बात निकल आई, अब सावधानी से सुनना, मन खट्टा नहीं करना। मन हो सकता कि खट्टा हो जाए, मैंने पढ़ लिया क्योंकि एक सरसरी निगाह से, हाँ पर कुछ भी नहीं, ठीक है। जयपुर जैन समाज के मैं कई छोटे छोटे ग्रुप बन गए, उनके कई तथाकथित लीडर। एक ग्रुप का लीडर कोई सामयिक या धार्मिक कार्य करता है तो दूसरा उसकी आलोचना और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करता है, इससे समाज जुड़ने के बजाय टूटता है। कृपया इस संबंध में समाज में कुछ नियम प्रतिपादित करना, हम लोगों को इस संबंध में क्या करना चाहिए, अब बताइए आप, जिससे कि समाज जुड़े। कैसे जुड़ेगी समाज, कैसे जुड़ती है बताओ? अच्छा धागा टूट जाए तो कैसे जुड़ता, गांठ बांधना पड़ती, ये जुड़ने का तरीका सही है क्या? नहीं। और अगर कांच टूट जाए तो कैसे जुड़ता, उसके बीच में सोल्यूशन लगा दें, लेकिन वो भी दिखता है तो जुड़े कैसे? दोनों को मैरिज कर दो और फिर से जमा दो, हो गया, जुड़ जाएगा। एक मैरिज होगा दूसरे से जुड़ते जाएगा, लेकिन लाइन दिखेगी। और होता यही है, कोई झुकने को तैयार नहीं, तो कभी भी नहीं जुड़। दोनों को अपनी कषायें मंद करना पड़ेंगी। दो ग्रुप बन गए हैं, ग्रुप बने काय से थे, कषाय की तीव्रता से। तुम चार जनों के लीडर और हमें पांच में नहीं रखो तुम लोगों में, अच्छी बात, हम चार जने के लीडर बने। लीडर बनने की जहां भावना है, जहां कुछ करने का उद्देश्य नहीं है,
जहां सिर्फ अपनी प्रभावना का ना नेम एंड फेम, मुझे लोग जाने, ज्यादा से ज्यादा जाने,
वैद्य डॉक्टर के पास इवन तीर्थंकर भी आ जावे तो कोई इलाज नहीं उसका, स्वयं के पास है। लेकिन अगर हमें ये चीज आ जावे कि नहीं, मुझे तो अपना कल्याण, प्राणी मात्र का कल्याण और धर्म की प्रभावना करनी है, तो फिर मैं वैसे कार्य करूंगा, अन्यथा अपने बढ़ाने बढ़ाई के लिए मुझसे जो बनेगा दूसरे का डिस्ट्रक्शन भी करना होगा तो वैसा करेंगे। इसलिए इसका एक ही उपाय है कि कषायें अगर मंद हो जावे तो मिलान हो सकता है, अन्यथा तो ये सब कई बार इन चीजों पर डिस्कशन हो चुका लेकिन संभव ही नहीं। पहले हमने कषाय करी तो हम अलग अलग हुए, श्वेतांबर दिगंबर, फिर हमने दिगंबर में भी डिवाइडेशन किए, 13 पंथ, 20 पंथ, तारण पंथ और एक चौथा नया पंथ बन गया है। वो कुछ दिन के बाद आ जाएगा, कागजों पे आ जाएगा, मन में आ जाएगा लोगों के, 4 पंथ लगभग बन चुके। और इधर अगर देखें अगर तो श्वेतांबरों में कितने गण और गच्छ हैं, उनसे पूछें अपन, बहुत सारे सैकड़ों की संख्या में डिवाइड। तो ये धीरे धीरे अब जो है फैमिली में भी, पहले 4 भाई एक साथ रह लेते थे, अब नहीं रह, अब एक फैमिली भी अपने साथ नहीं रह सकती है। धीरे धीरे ये क्या चीज है, ये कषायें बढ़ेंगी, प्रेम घटेगा, तो सारी चीजें इसी तरह होती चली जाएंगी। भैया चेंज करना चाहिए, भाईचारे की भावना सबके भीतर आवे, तो हो सकता मैं भी लगे हुए हाथों से आप आहार ले लेते हैं कि नहीं, ले तो लेते हैं, अभी तक तो लिया है, ऐसी शिकायत का मौका हमने आपको दिया ही नहीं, आप क्यों शिकायत कर रहे हैं, हैं? शुभ माना जाता है मेहंदी को, तो शुभ माना गया। और दूसरे जो सौंदर्य प्रसाधन के उपाय हैं उनमें तो हिंसा है, लेकिन इसमें हिंसा की कम से कम गुंजाइश है। अब रक्षाबंधन आएगा तो कोई ना कोई की बहन तो होएगी, कोई भी नहीं होगी, बूढ़ी बड़ी सॉरी अम्मा जी भी क्यों ना हो, वो भी किसी की बहन होएगी, हाँ ऐसा तो हो नहीं सकता कि किसी की बहन ना हो। अब बहन होएगी तो फिर रक्षाबंधन को तो जरूर से और लगाएंगे, अब लगाएंगे तो फिर हम हार नहीं लें तो ऐसे कैसे काम चलेगा बताओ, फिर सभी लोग लगा के आ जाएंगे तो फिर कैसे करेंगे इसलिए हम ऐसा नहीं करते हैं, ले लेते हैं। आचार्य श्री ने कहा इसमें कोई वो नहीं, पर थोड़ा सा ज्यादा उसी की तरफ कई लोगों का ध्यान रहता ना उसको, तो वो ठीक नहीं है, बस इतना ही ध्यान रखना अपने। उपवास और अनशन क्या चीज है, दोनों एक ही चीज है। अनशन शब्द मतलब हंगर स्ट्राइक नहीं है वो, हानी तो आप सोचे कि हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, अनशन कर लिया। अनशन का दूसरा अर्थ होता है कि हम अपनी मांगे पूरी करवाने के लिए अनशन कर रहे हैं। अपने यहां पर अनशन का मतलब है अनेशन, जिसमें कि हम एशन मतलब कहलाता भोजन, एशना समिति होती ना मुनि महाराज के, तो एशन शब्द, एशन का अर्थ है 4 प्रकार का भोजन। अनएशन, जिस दिन हमने 4 प्रकार के भोजन का त्याग कर दिया उसको बोलेंगे अनशन, उसी को बोलते हैं उपवास। उप मतलब निकट और वास मतलब रहना, चारों प्रकार के भोजन के पास नहीं जाना, चौका के पास नहीं जाना, अपने पास रहना, इसका मतलब उपवास। दोनों एक ही चीजें हैं, चार प्रकार की कषाय छोड़ना, चार प्रकार के आहार को छोड़ना और अपने आत्मा के निकट रहना, यही उपवास है, ये अंतन है। ये क्या लिखा? अच्छा नहीं, मैंने तो गड़बड़ कर दिया पढ़ने में, इन्होंने लिखा था मैंने उपवास व्रत लगा दिया, नहीं इन्होंने तीन टर्म लिखी हैं, उपवास व्रत और अंतन। अपन लोग अपनी सामान्य भाषा में बोलते हैं व्रत रखा हमने आज, व्रत रखा मतलब उपवास करा है, हैं? उसी को उपवास कहते हैं। व्रत कहो, उपवास कहो, अंतन कहो, तीनों एक ही हैं। ये कह रहे हैं कि तीनों में क्या भूखा रहना पड़ता है? अब भूखा काय को रहेंगे आप, और दूसरी चीजें खाओ। हाँ, चार प्रकार का आहार नहीं करो, और क्या क्या पियो? धर्मामृतम सतृष्णा, अत्यंत तृष्णा के साथ। तृष्णा अच्छी चीज नहीं है, लेकिन कह रहे हैं अत्यंत आकांक्षा के साथ किस चीज का पान करो? धर्मामृत का पान करो, घटाघट पीते रहो। फर्स्ट क्लास आचार्य जी कहते हैं कि उपवास के दिन चॉकलेट खाना चाहिए। कौन सी वाली चॉकलेट? हाँ, आचार्य जी की चॉकलेट अलग है, कुंद कुंद स्वामी की गाथाएं हैं विशिष्ट, वे हैं चॉकलेट के समान, तो मुंह में डालो अर्थात कंठ में उनको याद कर लो और बार बार उनका चिंतन करो तो चूसना, वही तो कहलाएगा, और क्या कहलाएगा। ऐसी बहुत सी चीजें बनी है, आपको मालूम ही नहीं था, अब आप पता कर लो। ये हमारे यहाँ पर मिलती है, वहां पर बहुत सारी एक तरह की चिंगम और सब। क्या उपवास पूर्व में सोच कर लिया जा सकता है या नहीं? उपवास की प्रक्रिया या क्रिया क्या है करने की? ऐसा होता है पूर्व प्रत्याख्यान और एक विशेष प्रकार का उपवास की प्रक्रिया में शामिल किया है। एक दिन पहले से ही आज शाम, कल उपवास करना है मान लो, तो आज शाम का भोजन पूरा ले लिया, पानी ले लिया, अब तो लेना नहीं है, तो उसके बाद फिर उसी स्थान पर बैठें या कि मंदिर में या गुरुजनों के निकट जा करके और कल के उपवास का प्रतिष्ठापन करना, नौ बार नमोकार करके सिद्ध भक्ति करके, और अब मैं कल कब तक के लिए, दूसरे दिन, अगले दिन मतलब, कल तो मैं लूँगा ही नहीं, परसों 9:30 तक ऐसा संकल्प कर लेना कि फिर मैं तब तक चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ। ये उपवास ग्रहण करने की सामान्य सी विधि है। अगर ऐसा नहीं कर पाए तो जिस दिन अपन को उपवास करना है उस दिन सुबह से उठ करके नहा धो करके बढ़िया से मंदिर गए और भगवान की पूजा पाठ करी, वहीं पर भगवान की पूजा पाठ करके अब मैं चारों प्रकार के आहार का त्याग करता हूँ। वो भी है दिन भर के लिए चारों प्रकार के आहार का, ऐसा या एक दिन पहले से या कि उसी दिन भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना कि भोजन करने के बाद उपवास करना। हाँ, कई लोग कहने लगे कि भोजन के बाद ले लेंगे हम उपवास, तो फिर क्या, शाम तक का वैसे तो उपवास ही है, सुबह तो खाया शाम तक नहीं खाया बीच में उपवास है, पर वैसा नहीं। आपको नारियल ही क्यों चढ़ाते? श्री फल, इसको नारियल, आचार्य जी के नारियल मत कहो, नारियल तो वो ठीक नहीं, रियल नहीं है वो नारियल शब्द नहीं कहो, ऐसे वैसे तो नारिकेल है, ओरिजिनल शब्द जो है नारिकेल, पर उसको बोलते हैं श्री फल। क्यों श्री फल कहा? तो आचार्य भगवंतों ने प्रशंसा करते हुए लिखा है कि कृतम उपकारम ना विस्मरंती साधवा नारिकेलवत। श्रीफल के समान सज्जन पुरुष अपने ऊपर किए गए उपकार को नहीं भूलते हैं, जैसे कि नारियल अपने ऊपर किए गए पृथ्वी के उपकार को नहीं भूलता, पहले पृथ्वी से पानी लेता है और फिर उस पानी को अपने भीतर संचित करके और लोगों को लौटा देता है, मीठा करके अच्छा करके लौटा देता है। कृतम उपकारम ना विस्मरंती, किए गए अपने ऊपर उपकार को नहीं भूलता, इसलिए सबसे श्रेष्ठ फल माना जाता है नारियल, नारिकेल जिसको कहते हैं, यस्सी फल। इसलिए अपन श्रेष्ठ फल चढ़ा देते हैं, भगवान के सामने भी चढ़ाते हैं, पंच परमेष्ठी के सामने चढ़ाते हैं श्री फल, महाराज के सामने 108 लगाते हैं, तीर्थंकर के 1008, ये हमने पहले ही बताया था, अब नहीं बताते कि बता दें, जिसने पूछा है वो सोचेगा कि वाह हमें मालूम ही नहीं है। देखो ऐसा है, कोई भी काम करते हैं तो प्लान करते हैं, फिर मटेरियल कलेक्ट करते हैं, फिर एक्शन शुरू करते हैं, मन से करते हैं, वचन से करते हैं, शरीर से करते हैं, स्वयं करते हैं, दूसरे से कराते हैं, करने वाले की प्रशंसा करते हैं। ये कितने हो गए? 3, 3, 3 मल्टीपल करो एक दूसरे से तो 27, कोई ना कोई कषाय होती, क्रोध मान माए लो, मल्टीपल करो 108 हो गए, 27 में करके देख लेना, वो पहले से किया हुआ है उतना ही आएंगे आप अलग से भी, तो 108 हो गए। 108 प्रकार से ही हम कोई भी काम करते हैं, भला काम करते हैं तो भले कर्म आते हैं, बुरा काम करते हैं तो बुरे कर्म हमारे भीतर आ जाते हैं, बुरे संस्कार पड़ जाते हैं। जिन्होंने अपने जीवन में समस्त बुरे कार्यों के आने के द्वारों को बंद कर दिया है, एक स्वाट तो उनके साथ एक स्वाट लगा देते हैं। उसी तरह माला में भी अपन एक स्वाट नमोकार बोलते हैं, एक एक दरवाजा बंद हो जाए पाप के आने का और खुल जाए कौन सा पुण्य के आने का। इस तरह से दोनों काम एक स्वाट लगा देते हैं। 1008 में तो भगवान के 1008 अच्छे शुभ लक्षण होते हैं और 1008 नाम के द्वारा इंद्रों ने उनकी पूजा करी है, इसलिए अपन 1008 लगा देते हैं। एलाचारी किसे कहते हैं? जो एल का मतलब होता छोटा, तो जो आचारी तो नहीं है लेकिन जिनको आचारी ने दीक्षा इत्यादि देने का काम सौंप दिया है वो एलाचारी कहलाएंगे, बालाचारी कहलाएंगे। ऐसी परिभाषाएं संघ में ही ऐसे विभाजन कर दिए जाते, मैंने ग्रुप ऐसे ग्रुप लीडर जैसा बना दिया जाता कि आप इनको इनको ऐसे करो। पर वो अभी आचारी परमेष्ठी में शामिल नहीं होंगे, हैं तो वो मुनि, लेकिन उन मुनियों में भी थोड़ा सा उनको एक्स्ट्रा एक काम सौंप दिया गया है, दीक्षा इत्यादि आप दें। पर अभी पूरे संघ चतुर्विध संघ के वे नायक नहीं हुए हैं, ये ध्यान रखना। हाँ, वो दो तीन मुनि महाराज जिनको उनने दीक्षा दी उनके नायक हैं, लेकिन पूरे चतुर्विध संघ के नायक हो जाएंगे तो आचार्य परमेष्ठी कहलाएंगे वो, इतना ही उसमें डिफरेंस। महाराज सुहाग दशमी के बारे में संक्षिप्त में बता दीजिएगा। आज सुहाग दशमी जो है वो कोई एक राजा जी थे, तो उनकी रानी के क्या हो पुत्र नहीं होता था, तो जब उनके यहाँ पर मुनि महाराज आए तो उनसे पूछा कि हमारे यहाँ पर पुत्र क्यों नहीं होता, तो उन्होंने कहा कि तुमने पूर्व जीवन में मुनि महाराज के कार्यों में अंतराय डाला था, हाँ इसलिए तुम्हारे पुत्र उत्पत्ति में अंतराय आ गया, क्या करना चाहिए महाराज। तो ये अक्षय दशमी जिसको कहते हैं, इसी को सुहाग दशमी, इसी को अक्षय दशमी बोलते हैं। ये अक्षय दशमी का उपवास 10 साल तक करो, फिर 10 उपकरण मंदिर में भेंट करो, 10 शास्त्र लिखवा करके भेंट करो, मंगल द्रव्य भेंट करो, ऐसे करके ये तो तब से जो है ये प्रक्रिया शुरू हो गई। इसमें अपन को आकांक्षा क्या है? आकांक्षा अपने कर्मों की, असाता कर्मों की निर्जरा। असाता कर्म की वजह से ही सारे सुख दुख होते हैं, कोई अभाव होता है तो वो भी असाता की वजह से होता। तो अपन अपने हमेशा सौभाग्य की कामना करते हैं कि हमारे जो भी दुर्भाग्य हैं वो सब हमारे हट जावे हैं जीवन में। इसको माँ लोग ज़्यादा करती हैं, उनके जीवन में सौभाग्य किस बात का है? उनका परिवार ठीक रहे, बेटा ठीक रहे, जीवन साथी ठीक रहे, सभी लोग घर के अच्छे से रहें, बताओ तो। धर्म ध्यान अपना और कल्याण की भावना सबके प्रति, ये कैसी प्रक्रिया बनाई होगी पुराने लोगों ने। व्रत भी रखा, व्रत उपवास करने से अपना कल्याण तो हुआ ही, लेकिन अपन ने भावना कैसी भाई, जिस परिवार को हम बिलोंग करते हैं उसमें सब अच्छे से रहें, सब तभी मेरा सौभाग्य है। अपन तो सिर्फ अपना अपना करके सौभाग्यशाली मान लेते हैं, लेकिन ये व्रत कह रहा है कि अपना सौभाग्य दूसरे के सौभाग्य में निहित है, दूसरा अच्छे से रहे इसीलिए मुझे प्रसन्न है, इसीलिए मेरा सौभाग्य मानता हूँ। ये बात, ये एक तरह की कहना चाहिए हाई थिंकिंग है, एक बहुत ब्रॉड एटीट्यूड है सोचने का, एक बहुत बहुत व्यापक वो है। हर एक व्रत को मैंने देखा, इसके पीछे जो घटनाएं हैं वो यही संदेश देती हैं, और इससे ये संदेश लेना भी चाहिए। गीतराज स्तोत्र का हमें अर्थ बता दीजिएगा। अरे वो 5 मिनट का काम है, हम तो सोच रहे थे कि ज़्यादा कठिन, उसमें तो सिर्फ कौन है वीतरागी जिनके रोग नहीं है, शोक नहीं है, व्याधि नहीं है, निद्रा नहीं है, चिंता नहीं है, पसीना नहीं आता, 18 दोषों से रहते हैं, यही तो लिखा उसमें, न स्वेदम न खेदम न भेदम कुछ भी नहीं है। ठीक है, अपन उसमें कुछ कठिन शब्द हैं उनको अपन समझ लेंगे, 5 मिनट का काम है, वैसे है बहुत अच्छा, उसको पढ़ने से बड़ी मन में 5 मिनट के लिए और शांति मालूम पड़ती है। हमारे घर में ड्राइंग रूम और बेडरूम एक ही है, तो क्या हम उसमें महाराजों के और भगवान के फ़ोटो लगा सकते हैं? ऐसी जगह फ़ोटो लगाने का निषेध किया है बेडरूम में, हाँ उसमें लिखा है कि बेडरूम की दीवारों पर, और हम कोई भी अपने गुरुजनों के और भगवान के, वीतरागी कम से कम, हाँ अपन तो वीतरागी को ही भगवान मानते हैं, तो वीतरागी भगवान को मानते हैं तो वीतरागी भगवान के कोई भी फोटोग्राफ कम से कम बेडरूम जहाँ हम सोते हैं, क्योंकि सोते समय कोई भरोसा नहीं रहता, पैर कहाँ चले जाएंगे, हाथ कहाँ चले जाएंगे, अभिनय हो गए। अगर रखना भी है, पूछा कि ऐसा कैसे हमको, तो मेरे से उठ करके सबसे पहले अगर दर्शन करें कम से कम कुछ चित्र वगैरह हो, तो फिर उन्होंने कहा कि बाजू में सिरहाने टेबल पर, और वो जो रखते ना अपन, तो वैसे बना कर उसको फ्रेम फ्रेम वगैरह में, और उनको रख लें ताकि सिरहाने हमेशा रहें, उठ करके प्रणाम कर ले। लेकिन वॉल पर नहीं लगाना, जो चारों दीवारें हैं उन पर नहीं। ऐसा लिखा पढ़ा भैया हमने, आपको बता दिया, पर लॉजिक क्या है? लॉजिक यही हो सकता है शुद्धि अशुद्धि का, विनय अभिनय का, इतना ही हो सकता, और क्या हो सकता। हम अपनी अलमारी में ऋषि मंडल यंत्र, सिद्ध चक्र का यंत्र, भगवान के फोटो का मुख, और पूजा करते समय हमारा मुख किस तरफ होना चाहिए? भगवान का मुख तो हमेशा उत्तर और पूर्व में होना चाहिए, और भगवान की फोटो वगैरह जो अपन रखते हैं घर में वो सब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में होना चाहिए, नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर जो है उस कॉर्नर पर ये सारी चीज़ें, कोई अलमारी भी रखें तो उसमें भी उसी तरह उस कॉर्नर पर अपन सारी चीज़ें रखें, ज़्यादा अच्छा रहता। अपना मुख तो नेचुरल है कि अगर भगवान की फ़ोटो का हो रहा है, जैसे भगवान अपन भगवान का मुख किस तरफ है, ये पूर्व है, ये उत्तर है ना, तो भगवान की तरफ पूर्व की तरफ है तो अपन खड़े होंगे तो अपना मुख किस तरफ हो जाएगा? पश्चिम। उसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि भगवान की तरफ मुख है, फिर वो पश्चिम मुख नहीं कहलाएगा, वो भगवान की तरफ मुख कहलाएगा। और जब अपन को ध्यान वगैरह करना है तो फिर अपन भी जिस डायरेक्शन में भगवान का मुख है उसी में, वहाँ बाजू में बैठ करके उसी डायरेक्शन से ध्यान करेंगे, मतलब उत्तर और पूर्व में मुख कर लेंगे। ये तो भजन और कहानी सुनाओ बच्चों के लिए एक ही काम है, सुनाएंगे। कुछ लोग हमसे कह रहे थे कि बच्चों के लिए आप 10 मिनट दें, छोटे छोटे बच्चों के लिए KG 1, और एक जगह लिखा है कि बच्चों की दोस्ती और जी को जंजाल। हमने ऐसा पढ़ा था कि बच्चों की दोस्ती जी का जंजाल, बड़ी मुश्किल होती है उनको समझाना बुझाना, बहुत कठिन छोटे छोटे बच्चों के लिए तो बहुत। माँ लोग पता नहीं क्यों अपना काम दूसरे को सौंपना चाहिए, 2.5 साल के बेटे को जाओ स्कूल हम निश्चिंत, 5-6 घंटा को बला इटली वहाँ कहने को कि हमारा बेटा जो है इतना छोटा होने के बाद स्कूल पढ़ रहा है, उसकी तो जान निकल जाती है, वो बच्चा टांगे टांगे इतना बड़ा उसका बैग रहता है, जितना बड़ा वो खुद नहीं है। फिर भी वो मेरे से ये चाह रहे थे कि थोड़े संस्कार अपन को, हर एक माँ को कम से कम 5 मिनट तो अपने बेटे को अपने पास बिठा करके और नमोकार का उच्चारण तो रोज करवाना चाहिए। एक ही फैमिली हमको मिली जिसमें कि 95 साल के पिता के पास उनका 72 साल का बेटा बैठ करके नमोकार पढ़ता है, परंपरा है, और 72 साल के बेटे के साथ 52 साल का बेटा, और उनके बेटे के साथ 25 साल का, और उसका 1.5 साल का बेटा, जिन्होंने इतना देख करके फिर 99 साल में मरण किया, और 99 साल के बाद भी मेरे से कहते थे मैं आपको बूढ़ा लगता हूँ क्या? अरे नहीं, मैं कहता था नहीं लगता हूँ, बिल्कुल चंगा काम, धर्म ध्यान करने में, अपना काम करने में आखिरी दम तक। क्यों? किस बात का? हमारे पिता ने हमको यही सिखाया, रोज सब अपना अपना नमोकार पढ़ते हैं, सब अपनी अपनी भक्ति पढ़ते हैं, ऐसे नहीं। फैमिली है तो फैमिली में एक फैमिली फीलिंग तो होनी चाहिए। होटल और फैमिली में क्या अंतर है? होटल में भी तो बहुत सारे लोग रहते हैं, फैमिली में फैमिली फीलिंग है, सब एक है। तो कम से कम माँ अपने बेटे को पास बिठाए 5 मिनट के लिए, कोई भी उसका टाइम फिक्स कर दें कि इस टाइम पे तुम्हें कहीं भी रहो और वहाँ आना है और 5 मिनट बैठना है, मैं नमोकार पढ़ूँ, आता है तुम्हें लेकिन मेरे मुँह से सुनो, माँ के मुँह से विद्या और माँ के हाथ से भोजन जिसने किया है वो पतित नहीं हो सकता, ये लिखा उसने। हाँ, माँ के हाथ का भोजन किया जिसने जिंदगी भर, और माँ के मुँह से जिसने विद्या, जिसने नमोकार पूरी जिंदगी माँ के मुंह से सुना, बहुत बड़ी चीज़ है। ऐसे संस्कार आप डालें तो बहुत अच्छा रहे, हमारा काम भी कम हो जाए। मुहूर्त किसे कहते हैं? 48 मिनट के समय को मुहूर्त कहते हैं, एक तो ये है, और दूसरा जिसमें नक्षत्र, तिथि और वार ये सब ठीक ठीक योग्य हों, शुभ अशुभ इनका कैलकुलेशन किया जाता है, तो वो भी मुहूर्त कहलाता है। शुभ मुहूर्त है कि अशुभ मुहूर्त है, उसमें 5 चीज़ों का कैलकुलेशन करते हैं, वो कहलाता। कर्म दिखाई नहीं देते, इनका अस्तित्व कैसे माना जाए? अरे इनका फल देखने में आता है, इसी से तो इनका अस्तित्व पता लग जाता है, ऐसे पता कर सकते हैं। बस भैया अब जो है प्रश्न उत्तर में बहुत सारे प्रश्न रह गए, लेकिन एक बड़े मजे का, ये तो हमने सुना ही दिया दशमी का व्रत का, सौभाग्य दशमी का, एक और काम हो गया। हाँ ये इतने हैं, और इसमें एक बड़ा मजे का है वो सुनाई देते हैं। बहुत ऊंचे मंजिल वाले मकान होने पर अगर उसमें लिफ्ट लगी हो, समझ गए सब लोग, अगर उसमें लिफ्ट लगी हो तो क्या आप लिफ्ट का प्रयोग करके आर के लिए जा सकते हैं? हमें पूछने वाले ने पूछा तो भैया ऐसा उपद्रव काय को करेंगे, सीढ़ी से चढ़ करके जाएंगे। लिफ्ट में बैठना भी एक तरह से प्लेन प्लेन में बैठना ही है, वो भी एक तरह से जैसे आकाश में तो ऊपर और नीचे हवा में ही तो उसको मूव करना रहता है। तो उसको अपने यहाँ पर आचार्यों ने यान का निषेध किया, यान में बैठने का, चाहे वो जल यान हो चाहे वायु यान हो या कि रोड पे चलने वाली कोई भी यान हो मशीन, उन सब के लिए निषेध। अगर कोई को कदाचित बैठना पड़े तो उसका प्रायश्चित किया हुआ है, जैसे नदी पार करनी है और अब कोई गुंजाइश नहीं है, बिना पार करे काम नहीं चलेगा, पूर आ गया है। एक बार हमारे जीवन में ऐसा मौका आया था तो नदी पार करना पड़ी, नाव में कुंडलपुर आ रहे थे कटनी से, बीच में नदी चढ़ गई। पंडित जी भी थे, बोले महाराज प्रायश्चित तो लेना पड़ेगा, चलते हैं, क्योंकि घुटने से ऊपर पानी में जा नहीं सकते, घुटने तक पानी में तो मूव कर सकते हैं, कोई प्रायश्चित नहीं। घुटने से एक इंच ऊपर पानी चढ़ गया, एक उपवास। घुटने से दो इंच ऊपर पानी में गए, दो उपवास। जितने इंच ऊपर उतने, हाँ ऐसा आगम बहुत मुनिजनों के लिए इस तरह इतना स्ट्रिक्टली नहीं, तो फिर तो मजा है, घूम रहे हैं आराम से प्लेन में, सवेरे का नाश्ता कहीं पर तो दोपहर का लंच कहीं पर तो शाम का डिनर कहीं पर, तो ऐसा तो भगवान हो गया। ये उन लोगों के लिए है जिनको कि ब्रेकफास्ट लेना और लंच लेना, इसलिए आहार की चर्या में उसने जिनने पूछा है लिफ्ट का यूज नहीं करेंगे, अपने पाँव पाँव से चल करके जाएंगे। आपका बहुत ऊंचा हो तो घबराइए नहीं, हम आ जाएंगे ऊपर भी आएंगे, लिफ्ट का उपयोग नहीं करेंगे। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नेच रहे। मैत्री भाव जगत में मेरा, सब जीवों से नेच रहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे। दीन दुखी जीवों पर मेरे स्रोत बहे, रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं। रहे भावना ऐसी मेरी सरल सत्य व्यवहार करूं, बने जहाँ तक इस जीवन में औरों का उपकार करूं। बने जहाँ तक जीवन में औरों का उपकार करूं, औरों का उपकार करूं, औरों का उपकार करूं। आचार्य गुरुवर विद्या सागर मुनि महाराज।